ओम शांति। आज पहले दिन बाबा के इस मूल पवित्र स्थान पर हम अवतरण भूमि पर गंगा के किनारे पहुंचे हैं और आज की पहली क्लास में ही बाबा के हस्तों से पली हुई वो महान विभूति हमारे सामने है जिनको स्वयं भगवान ने नाम दिया आप हर की पौड़ी की गंगा हो। ऐसी महान विभूति आदरणीय शीलू दीदी जी का हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी रात लेट पहुंचे हैं, सभी 1 बजे तक सोए होंगे, कोई शायद उससे भी ऊपर। थोड़ा बहुत सुस्ती में बैठे थे अभी मैंने देखा कोई कोई, लेकिन आपको सामने देख करके सभी फ्रेश हो गए हैं और दीदी जी के मुखारविंद से अमृतवाणी सुन करके तो सबकी सारी थकान उतर जाएगी, है ना? और बाबा तो वैसे ही सबको मसाज कर ही रहे हैं और 3 दिन तक और बाबा ने खूब सबकी मसाज करनी है। आदरणीय शीलू दीदी जी से मिलना भी आप सबका एक लकी ड्रॉ है, क्योंकि आदरणीय दीदी जी सन 1960 में ही केवल 12 वर्ष की आयु में ही बाबा का बन गए और स्पष्ट रूप से बाबा के अवतरण को आपने इन्हीं आंखों से पहचान लिया। और जैसे ही आपने पढ़ाई पूरी की अपनी BSc, कई बंधन थे, उन बंधनों को क्रॉस करते हुए दीदी जी ने 69 में ही साकार बाबा के होते ही अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। 70 से लेकर 74 तक इंडिया और नेपाल और इधर आसपास बहुत सेवाएं की। फिर 74 से लेकर 76 तक बाबा ने आपको विदेश सेवाओं अर्थ भेजा। कई देशों में दीदी जी सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और 76 में खुद अव्यक्त बाप दादा ने सामने आपको मंच पर बुलाकर कहा अब आपकी जरूरत यहाँ हेडक्वार्टर में है। जैसे गंगा सारे देश में जरूर बहती है, लेकिन जो हर की पौड़ी होती है वहाँ पर सारा देश नहाने आता है, ऐसे ही ये हेडक्वार्टर है। तो बाबा के इस हेडक्वार्टर में अवतरण भूमि में सारे संसार की आत्माओं को आना है और इस स्थान पर आप जैसी महान विभूतियों की जरूरत थी। दूसरा, बाबा की ओर से आपको विशेष वरदान प्राप्त हुआ था कि आपके मुख पर सरस्वती स्वयं विराजमान है, ये भी बाबा ने अपने मुख से आपको वरदान दिया। ताली तो बजानी चाहिए ऐसा सुन। न सिर्फ हेडक्वार्टर, लेकिन दीदी जी ने अपने लगभग सारे विश्व में फैले हुए ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स के सभी सेंटर्स का भ्रमण करते हुए पूरे विश्व की सेवाओं का दीदी विशेष कारण बने हुए हैं। और साथ ही साथ जब सबसे पहले टीवी चैनल्स पर सेवाओं का कार्यक्रम शुरू हुआ लगभग आज से 30 ईयर्स पहले, तब आदरणीय दीदी जी का सबसे पहले ZTV पर प्रवचन का दौर आना शुरू हुआ था, जिससे चारों तरफ बेहद में ब्रह्मा कुमारी का नाम हुआ था। पीस ऑफ माइंड पर तो अभी लगभग रोज सवेरे दीदी जी के मुख से सुनाई गई यहाँ की ओम शांति भवन की मुरली सब सुनते हैं। राजयोग शिविर दीदी जी की विशेष दक्षता है उसमें। राजयोग शिविर की बुक भी आपने लिखी, उसकी ऑडियो कैसेट्स भी आपकी मिलती है और जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहली राजयोगा कमेंट्री भी दीदी जी की ही रिकॉर्ड हुई थी, सबसे पहली। और जब हम ज्ञान में चले तब अगर राजयोग शिविर कहा जाए तो शीलू दीदी, कमेंट्री कहा जाए तो शीलू दीदी, VIP सेवा की बात पूछी जाए तो शीलू दीदी, इंग्लिश ट्रांसलेशन, विदेशियों की सेवा तो शीलू दीदी। अभी तो दीदी ने अपने और बहुत बाय प्रोडक्ट अपने और मॉडल्स तैयार किए हैं, खुद गुप्त होते जाते हैं, लेकिन और खास मेरे जैसी आत्मा को भी दीदी जी ने ही सेवाओं में बेहद में समर्पित होने के लिए अपना हाथ दिया था। 87 में शीलू दीदी जी हमारे लौकिक घर सिरसा पधारे थे और वहाँ पर दीदी जी का क्लास था और उसके बाद दीदी जी के साथ ही मैं आगे जहाँ जहाँ दीदी गए टूर पर साथ गई और उसके बाद मधुबन आई और मधुबन से चंडीगढ़ समर्पित हो गई, फिर वापस गई नहीं। तो दीदी जी टीचर ऑफ टीचर्स हैं, अपने जैसी हजारों टीचर्स आपने तैयार की हैं और आज भट्टी का पहला क्लास, भट्टी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है और बहुत महत्वपूर्ण विषय साथ में दीदी लेते हैं, अमृत वेला निद्रा जीत कैसे बने, क्योंकि अमृत वेला नींद बड़ी मीठी आती है, बड़ा भारी युद्ध करना पड़ता है। तो आदरणीय दीदी जी अभी हमें विशेष क्लास कराएंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी जी का पाठ याद है न? 3 बार ओम शांति कहते हैं। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो मैं तो शांत स्वरूप आत्मा, मेरा शिव बाबा शांति का सागर और मुझे शांति फैलानी है, यही मुझे करना है। पर उसके लिए खुद को पहले उस शांति के अनुभव में माहिर बनाना है। तो आप सब यहाँ भट्टी करने आए हो तो सबसे पहले प्यारे बाप दादा, मीठी मम्मा, सर्व दादियाँ, सर्व वरिष्ठ भाई, सर्व मधुबन निवासी भाई बहने तथा हमारे तरफ से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, बाप दादा की कर्म भूमि है, परिवर्तन भूमि है। जितनी महिमा करो उतनी कम है इस भूमि की, जहाँ स्वयं भगवान ने हम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होकर सारी रचना के भेद खोले, राज बताए हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया है, इतना लायक बनाया है, सत्युगी दुनिया के लिए योग्य बनाया है, ये वो भूमि है। तो आप सब ऐसी भूमि पर भट्टी करने आए हैं और जैसे ही आप पहुंचे होंगे आपको अकोमोडेशन मिली होगी, उसी के साथ साथ आपको यह बैज कहो, हम तो इसको कहते हैं विजय माला है, विजय माला आपके गले में पड़ी और एक ठप्पा लगा, जिस ठप्पे पर क्या नाम लिखा है, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या, पढ़ा आपने क्या लिखा है, संस्कार परिवर्तन मौन योग तपस्या। तो संस्कार परिवर्तन ये पहला लक्ष्य है इस भट्टी का, और कैसे करेंगे वो परिवर्तन संस्कारों का, मौन तपस्या करके। तो पहला लक्ष्य हमारा यही है कि जो भी मेरे अंदर पुराने संस्कार हैं, स्वभाव हैं, आदतें हैं, जो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है मिटाना, वो यहां हमें खत्म करके जानी है। कई खामियां हैं वो खत्म करनी है, कई कमियां हैं जो हमें भरनी है। इसलिए ये पुराने संस्कार समाप्त करने के लिए मौन तपस्या करनी होगी, अपने अंदर झांकना होगा कि ऐसे कौन कौन से संस्कार हैं मेरे अंदर जिनको मुझे परिवर्तित करना है, जिनको हम कहते आए हैं कि ये मेरे बहुत पुराने संस्कार हैं, लेकिन बाबा इसको स्वीकार नहीं करते। ये पुराने संस्कार नहीं है, ये तो द्वापर युग के बाद के संस्कार है। आपके तो अति पुराने संस्कार, तो वो अनादि और अविनाशी और आदि संस्कार हैं। जो अनादि अविनाशी संस्कार आत्मा के हैं, जिनको हम आत्मा के गुण मानते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये जो सात मूल गुण हम कहते हैं, यही वास्तव में आत्मा की शक्तियां भी है और यही हमारे अनादि संस्कार भी हैं। और इन्हीं संस्कारों से हम आत्मा भरपूर हैं। तो इन अनादि और अविनाशी संस्कारों को फिर हमने सतयुग में आकर के आदि संस्कारों में परिवर्तित किया, जिसको हम दैवी संस्कार कहते हैं। ये जो अनादि अविनाशी संस्कार है वो हमारे ईश्वरीय संस्कार है, और इन ईश्वरीय संस्कारों को दैवी संस्कार बनाया। कौन से हैं दैवी संस्कार? जो दैवी गुण है हमारे, कितनी लंबी लिस्ट है दैवी गुणों की। अनादि तो साथ ही है गुण, लेकिन जो दैवी गुण है वो तो कितनी लंबी लिस्ट है, या नीचे लिखी हुई है शांत ये हिस्ट्री हॉल के बाहर, इसमें तो 36 गुण है, परंतु 108 की भी माला बन सकती है। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, सरलता, कितने गुण हैं जो देवताओं में थे। बाबा कहते हैं ये ज्ञान देवताओं में नहीं होगा, लेकिन इस ज्ञान से जो संस्कार हमारे बनते हैं दैवी, वो आत्मा जरूर ले जाती है, ज्ञान नहीं ले जाएगी। और वही दैवी संस्कार बनते हैं जो हम व्यवहार में अनुभव करते हैं। तो वो जो मेरे अनादि अविनाशी और आदि संस्कार है, उन संस्कारों को जागृत करना है। और ये जो संस्कार हम पुराने मान रहे हैं, ये तो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं, इनको समाप्त करना है। तो कैसे करेंगे? मौन तपस्या से। तो मौन तपस्या में क्या करेंगे? पहले अंतर्मुखी बनेंगे, अंतर्मुखी बन करके आत्मनिरीक्षण करेंगे कि कौन कौन से मेरे अंदर ऐसे संस्कार हैं जिनको हम पुरानी आदतें कहते हैं, पर ये माया के कारण, माया के वश होकर के संस्कार बने हैं, ये बाबा ने नहीं दिए हैं। तो अंतर्मुखी बन करके पहले आत्मनिरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करके फिर विश्लेषण करेंगे, ये कैसे आसुरी संस्कार हैं, ये बाबा ने नहीं दिए हैं। तो विश्लेषण करके, निरीक्षण पहले करके, विश्लेषण करके, फिर उसके बाद आत्म बोध लाएंगे कि बरोबर यही मेरे अनादि अविनाशी आदि संस्कार है और वो ही मुझे अनुभव करना है, और फिर वो बोध होगा तब परिवर्तन आएगा। पर उसके लिए मौन तपस्या चाहिए। जितना जितना हम अपने अंतर में जाएंगे उतना उतना आत्मा को अपने असली संस्कारों का पता चलेगा। क्योंकि अब तक तो बाह्य मुक्ता में थे और जितना देह अभिमान है उतनी बाह्य मुक्ता है, इसलिए बाबा हमें पहला ही पाठ पक्का कराते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। ब्रह्मा बाबा ने भी यही सबसे पहला पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने घर वालों को भी यही पक्का कराया, बाबा की युगल यशोदा थी, बहुत ही राधिका, तो बाबा उनको पक्का कराते थे यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। क्योंकि लौकिक में तो कितना मोह होता है, लेकिन बाबा ने नष्टो मोहा होने के लिए ये पाठ खुद भी पढ़ा और लौकिक वालों को भी पढ़ाया, तो कैसे धीरे धीरे वो भी नष्टो मोहा बने बाबा के साथ साथ। और बाबा हद से निकल बेहद में चले गए। अभी केवल 4-5 बच्चों के पिता नहीं थे, लेकिन सारी प्रजा के पिता बन गए। सब उनके लिए बच्चे थे, चाहे लौकिक में उनका कोई वो कोई भी हो, चाहे युगल भी क्यों ना हो, यशोदा उनकी युगल थी। लेकिन बाबा की दृष्टि ऐसी बदली जो उन बाबा के लिए वो भी बच्ची थी। निर्मल शांता बाबा की लौकिक बेटी थी, लेकिन एक बेटी नहीं, कितनी बाबा को बेटियां मिल गई, पूरा ही परिवार बाबा का अलौकिक बन गया। तो ब्रह्मा बाबा ने ये कदम उठाकर कैसे अपने अंदर परिवर्तन लाया, एक अलौकिक नशा उनको था, मैं कौन हूं का नशा। अभी भी जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो वो नशा ब्रह्मा बाबा से भी झलकता है, पता चलता है ब्रह्मा बाबा का वो नशा। तो बाबा का नशा तो अपना ही था, शिव बाबा का रथ था वो नशा, फिर और था। लेकिन हम बच्चों को भी बाबा ने कोई कम नशा नहीं चढ़ाया, इतनी महिमा बाबा बच्चों की करते थे। हालांकि बाबा जानते थे कि बच्चों में कमियां भी बहुत है, लेकिन बाबा कमियों को न देख करके बच्चों की महिमा ही गाते थे। लेकिन फिर साथ साथ सावधान भी करते थे, बीच बीच में धर्मराज की याद भी दिलाते थे। देवता बनना है तो क्या पुरुषार्थ करना वो भी समझाते थे। हर प्रकार से बाबा राय देते थे, फिर आज्ञाएं भी करते थे, कभी कभी ऑर्डिनेंस भी निकालते थे, इतना बड़ा ऑर्डर, और अगर ऑर्डर नहीं माना तो फिर बाबा कहते धर्मराज की सजाएं खाएंगे। इतना सब कुछ हम बाबा की साकार मुरलियों में वो अनुभव करते हैं। फिर बाबा की अव्यक्त मुरलियों में तो बाबा ने यही कहा कि साकार मुरलियां तो कोर्स थी, अभी अव्यक्त मुरलियां फोर्स है, फोर्स करते ना, जोर से दबाते हैं। तो अव्यक्त मुरलियों में हमें वो फोर्स मिलता है, वो शक्ति मिलती है परिवर्तन करने की। ज्ञान समझ वो तो साकार मूल्यों से मिला, परंतु परिवर्तन करने की शक्ति फिर बाबा अव्यक्त मूल्यों द्वारा देते हैं, और उस परिवर्तन से हम स्वयं का भी कल्याण करते तो दूसरों का भी कल्याण करते। इसलिए बाबा ने यही कहा कि हर समय बैलेंस रखो, स्व और सर्व, ये बैलेंस रखने वाले ही ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। इसलिए चार विषय बाबा ने दिए, ज्ञान योग धारणा तो खुद के लिए, लेकिन सेवा ज्ञान योग धारणा दूसरों के लिए, पर उसमें खुद को एक उदाहरण रूप बनना है, तब ही हम सच्ची सेवा कर सकेंगे। खुद एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल, एक सैंपल खुद बनना है, करके कहना है, कह के नहीं कहना है, कह के कराना नहीं है पर करके कराना है। जब ये होगा तब हम प्रेरणा के स्रोत बन सकेंगे, पर उसके लिए शक्ति तो भरनी होगी ना। तो इसीलिए आप सब यहाँ आए हो। तो इस मौन तपस्या भट्टी में सबसे पहला लक्ष्य यही है, मुझे अपना परिवर्तन करना है, और छोटी छोटी कमियां खामियां जो भी है वो सब, वो खामियां वो गैप भरनी है, और उसके लिए तप करना है। तप करना है जिसको बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो जिससे यह परिवर्तन आ जाए। कल भी बाबा का वरदान था कि जब कोई भी चीज अग्नि में पड़ती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, सब बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। कोयला इतना काला काला कोयला आग में डालते हैं तो वो कोयला पहले काले से लाल बन जाता है, लाल से फिर एशेस, क्या कहते हैं अब, कैसा ऐश को क्या कहेंगे, राख बन जाता है। लेकिन वो रंग क्या होता है उसका, सफेद थोड़ी होता है, ग्रे कलर। अब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में क्या उसका रंग है, सलेटी। अच्छा अच्छा सलेटी। तो इसलिए देखो उसका रंग भी बदल जाता, रूप भी बदल जाता, गुण भी बदल जाता, सब बदल जाता है ना, क्या से क्या बन जाता है। सोना डालते हैं खाद वाला तो कैसे वो सारी खाद पिघलती जाती है, निकलती जाती है, और सोना सच्चा सोना बन जाता है। तो सच्चा सोना तब माना जाता है जब वो मुड़ सकता है, अगर वो कड़क है मुड़ नहीं सकता, माना अभी तक उसमें खाद पड़ी है। तो अगर हम अपने जीवन में फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते, मोल्ड नहीं हो सकते, माना अभी तक खाद पड़ी हुई है, कहीं होते ना बड़े रिजिड होते हैं, मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए, मैं जो करता हूँ वही सबको करना चाहिए, इसमें अभिमान भी झलकता है, और अभिमान के साथ क्रोध भी तो जरूर आएगा, अगर नहीं किया तो क्रोध आता है। लेकिन ये सारी खाद है जो निकल जाए और फ्लेक्सिबल बन जाए, ऐसे मुड़ जाए जो हम हर बात में अपने आप को एडजस्ट कर सके बिना उनका असर हमारे ऊपर आए। एक होता है उनका असर हमारे ऊपर आया और हम बदल गए, दूसरा है अपने असूलों में पक्के, पूरी धारणा पक्की लेकिन फ्लेक्सिबल, ठीक है ठीक है जितना कर सको। जैसे बाबा कितनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन फिर बाबा कहेंगे कोई बात नहीं, इनका इतना ही पार्ट है, क्या कहेंगे, इनका इतना ही पार्ट है, ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट है। फिर बाबा कहेंगे कि देखो सब तो महाराजा महारानी नहीं बनेंगे, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेंगे, इनका इतना ही पार्ट है। फिर बाबा कहेंगे यथा योग यथा शक्ति, हर एक की अपनी अपनी योग्यता है, चलो एक विशेषता नहीं आ सकती है तो दूसरी आवे, एक में तो विशेष बन जाए तो भी आगे बहुत बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बाबा फिर भी बच्चों का गुण देखते हैं, और उस जो गुण है कोई तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में कोई गुण ही ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आखिर है तो भगवान के बच्चे ना, भगवान इतना गुणों का सागर, तो कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने गुण हो ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो गुण हो उसमें निखार लाना है तो भी सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, क्योंकि उस एक गुण के पीछे फिर सारे गुण आ जाएंगे। परंतु हमको कैसा रहना है, फ्लेक्सिबल, हमेशा। दादी जी से एक बार पूछा किसी ने कि दादी जी कोई भूले करते हैं तो हमको तो उनको सजा देनी पड़ेगी। दादी ने कहा हम सजा नहीं दे सकते हैं, हम तो केवल प्यार ही दे सकते हैं, हम सजा नहीं दे सकते हैं। हमको लॉ को हाथ में नहीं उठाना है। फिर उसने कहा पर दादी जी लव और लॉ का बैलेंस रखना है। तो दादी ने कहा नहीं, ईश्वरीय परिवार में लव इज द लॉ, समझा क्या, प्रेम ही कानून है, यही कानून है। हम कानून को हाथ में नहीं उठा सकते, वो बाबा के पास है, धर्मराज वो जाने। दुनिया में भी कितने समझो किसने कुछ ऐसे कार्य किया जो गलत था, लेकिन हम उसको सजा दे सकते हैं, हम कहेंगे पुलिस में रिपोर्ट करो या कोर्ट में जाओ, नहीं, कोर्ट निश्चय करेगा, कोर्ट सजा देगा, कोर्ट फैसला करेगा। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, अगर अपने हाथ में लिया तो जिसने लिया उसको पहले सजा ऐसे ना, उसको पहले सजा मिलेगी, कानून को हाथ में क्यों लिया तुमने, तुम रिपोर्ट करो। तो कहने का भाव है कि बाबा हमें इतना ऊंचा उठाते तो हम भी उसी नजर से सबको देखें और मोल्ड हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार परिवर्तन है, कई लोग इसमें बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि झुक नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है, अगर झुक नहीं सकते अकड़ते हैं तो अकड़ना किसकी निशानी है, मुर्दे की निशानी है। तो जिंदा जो होता है वो तो मुड़ सकता है, और जो अकड़ा हुआ रहता है वो मुर्दे की तरह है। तो हम तो जिंदा है ना, जिंदा तो क्या अमर है लेकिन अमर होते हुए भी बाबा कहते जीते जी जरूर मरना है, जीते जी मरना है, आप मोए मर गई दुनिया, जो मर गया उसके लिए दुनिया मर गई। वैसे दुनिया का अंत वो तो अलग चीज है, लेकिन हम तो जीते जी मरे हुए हैं। तो इसीलिए हम जीते जी मरे हुए हैं तो हम किसी पर क्या हम सजा लाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो ये जो बाबा ने धारणा दी है ना, इससे हम इतना मीठा बन सकते हैं। जो एक बाबा की लेटेस्ट मुरली चली थी, मीठा बनो मीठा मीठा, सारी मुरली कितनी बार बाबा ने ये शब्द कहा, मीठा बनो मीठा बनो। आप सोचो ब्रह्मा बाबा कितना मीठा थे, कितने मीठे थे। हाँ समझो बाबा के पास किसी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन बाबा कभी भी ऊंचे स्वर में उनसे कभी नहीं बात की, बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया। फिर वो व्यक्ति तो पिघल जाता था, बाबा ने इतना प्यार दिया, और फिर बाबा को अपने आप ही सच बता देता था, बाबा को पूछने की जरूरत नहीं होती थी, बाबा इतना प्यार देते थे। तो हमको भी क्या करना है, फॉलो फादर। मदर माँ भी ऐसे, मम्मा भी ऐसे ही थे। मम्मा का तो कभी ऊंचा स्वर में आवाज भी नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। जैसे कहियो कर कुछ थोड़ा ऊंचा बोल देते हैं, लेकिन मम्मा का तो कभी नहीं सुना। हाँ, ब्रह्मा बाबा जब मुरली चलाते थे तब जोरदार मुरली चलती थी बाबा की, तो बाबा से पूछते थे, बाबा आज तो जोरदार मुरली चली, और बैठे होंगे तो होंगे 25-20 लोग, ना कितने ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन इतनी जोरदार मुरली जैसे कि बाबा पता नहीं कितनों को सुना रहे हैं। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको थोड़ी सुना रहा हूँ, बाबा के सामने तो सारे विश्व के बच्चे हैं। वो बच्चे जो आने वाले हैं, भविष्य में आने वाले हैं, उन बच्चों को भी बाबा सुना रहे हैं। तो देखो वो साकार मुरलियां जो कितने साल पहले चली होगी, आज हम वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, और कितनी प्रासंगिक लगती है, जैसे अभी के लिए ही है। तो ये जैसे अविनाशी बन जाती है। पर किस आधार पर? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी इतनी दूरांदेशी बुद्धि रखी। शिव बाबा तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं थे। इसलिए हमें पहला लक्ष्य तो यही रखना है कि संस्कार परिवर्तन हमारा लक्ष्य हो, फिर उसके आधार से जो हम योग तपस्या द्वारा ये परिवर्तन लाएंगे, उस परिवर्तन के आधार से ही जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, जो बाबा कहते कर्मातीत बनना है, कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से अतीत, कर्म योगी हैं हम, कर्म बंधनी नहीं है, किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधना है। कर्म के बंधन में कैसे बंधते हैं? जिम्मेदारियां निभाना और बात है, पर कर्म के बंधन में बंधना और बात है। जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि बाबा कहते हैं परिवार में भी रहना है, लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, वो भी निभानी है, लेकिन वो जिम्मेदारी बंधन न बन जाए। बंधन न बन जाए माना ये मेरा ही काम है, ये मैं ही कर सकता हूं, मेरे सिवाय किसी को आएगा ही नहीं, मैं करूंगा तब सफलता मिलेगी, ये मैं आ जाता है, ये अभिमान है, ये कर्म बंधन बन जाता है। और जहां ये कर्म बंधन बना तो फिर कर्मातीत कैसे बनेंगे? कर्मातीत का ये अर्थ नहीं है कि कर्म ही नहीं करना है, कर्मातीत का अर्थ ये भी नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं निभानी है, कर्मातीत का अर्थ ये भी नहीं है कि बस अभी जाना है घर बस और कुछ नहीं, नहीं सब कुछ करना है। ब्रह्मा बाबा ने अंत तक किया, अंतिम घड़ी तक सेवा की ना, लास्ट भी 18 जनवरी को बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के कमरे में आए और कैसे विदाई लिए। तो इसलिए सेवा में कभी भी पीछे नहीं, पर जितनी सेवा उतना ही फिर उपराम, फल की चिंता नहीं। ये है सच्चा कर्म योग। हम कर्म सन्यासी नहीं है, हमारा कर्म सन्यास नहीं है, पर कर्म योग सन्यास है। कर्म करते बाबा की याद में और फल बाबा को सौंप देना, जो बाबा को रिजल्ट देनी हो बोझ उनको दे दो, है ना। कई बोझ अपने सिर पर लादे रहते हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, क्यों इतना सोचते हो कैसे होगा, बाबा पर छोड़ दो ना, आप अपनी तरफ से पुरुषार्थ करो, फिर बाकी आपका है क्या काम, बाबा का है आपका का है, मेरा है तो फिर अभिमान आएगा, मोह आएगा, सब बातें आएगी, ये बाबा का है मैं निमित्त हूं। ये सोचने से इतने हल्के बन जाते हैं, क्योंकि हल्का बनना ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। हल्का बनना, एक तो मुड़ना और दूसरा उड़ना, तो उड़ेगा कौन जो हल्का होगा, अगर उड़ना है तो हल्का तो बनना पड़ेगा ना। अगर भारी होंगे तो मुड़ भी नहीं सकेंगे, मोटा व्यक्ति बहुत तो झुक भी नहीं सकता है, उड़ना तो दूर। तो अगर बोझ होगा व्यर्थ का या कोई भी, तो न मुड़ सकेगा न उड़ सकेगा। तो इसीलिए व्यर्थ को भी खत्म, और बाकी जो भी बोझ है बाबा को हम अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ तो वो भी नहीं करना है, यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी आपको खाना पकाना है माताओं को? नहीं। भाइयों को दफ्तर जाना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। बस मनोहर दादी थी ना, वो बहुत सुंदर बताती थी, हंसाती थी। यहाँ तो बस क्लास ग्लास क्लास ग्लास क्लास ग्लास, सवेरे सवेरे योग का क्लास, फिर चाय का ग्लास, फिर मुरली का क्लास, फिर चाहे दूध का ग्लास, चाय का ग्लास, नाश्ता, चलो फिर क्लास, फिर दोपहर को लस्सी का ग्लास, फिर शाम को चाय का ग्लास, फिर क्लास करो, फिर रात का भोजन, फिर क्लास ग्लास क्लास ग्लास। यही करना है और क्या, यही खेल है। इस खेल में रमण करना है। बच्चे बन गए ना, खेल बन गए। कल भी बाबा ने कहा तो मिट गए तो मिजेट इंग्लिश में कहते हैं, बना आयु तो बड़ी है लेकिन क्या कहते, बाबा मैं आपका एक साल का बच्चा हूँ, बाबा मैं आपका दो साल का बच्चा हूँ। दो साल का बच्चा बोलेगा क्या, मैं आपका दो साल का बच्चा? वैसे लेकिन हम तो बोलते हैं। यानी शरीर तो बड़ा है लेकिन हम छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे माना छोटे बच्चे बाप समान महात्मा, और छोटा बच्चा समान। तो यहाँ आपको बिल्कुल सारी दुनिया से फारिग होके एकदम छोटा बच्चा बन जाना है। वो जिम्मेदारियां सब वहाँ छोड़ के आए, बाबा को देकर आए या लेकर आए साथ में, हाई क्या होगा क्या होगा, वहाँ जाऊंगा पता नहीं, ये काम हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हाँ पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा, ऐसे सोच तो नहीं रहे यहाँ। बाबा पर सौंप दो, जो होगा अच्छा ही होगा, बस ये सोच लो अच्छा ही होगा। कई यहाँ ऐसे भी आए होंगे, थोड़ा बंधन वाले होंगे, तो बंधन वाले होंगे, थोड़ा झूठ सोच सच बता करके भी आए होंगे, कोई होंगे जरूर, हाथ नहीं उठवाते हैं परंतु होंगे जरूर। तो फिर सोचेंगे अरे मैं वापस जाऊंगी, वापस जाऊंगा तो अगर पता चल गया तो मैं कहाँ आया हूँ तो क्या होगा। तो बाबा कहते वो भी नहीं सोचो, यहाँ आप ऐसी शक्ति भर के जाओ, ऐसी शक्ति भर के जाओ जो उसकी बुद्धि भी बदल जाए, जो भी बंधन डालने वाला हो उसकी बुद्धि ऐसी बदल जाए जो उसको संकल्प भी नहीं आए कि कहाँ गया, कुछ भी नहीं, जैसे कि कुछ था ही नहीं। इतनी शक्ति भर के जाओ, अगर कुछ हुआ भी तो आप ज्यादा शक्तिशाली, हाँ या वो ज्यादा शक्तिशाली, कौन ज्यादा शक्तिशाली? हम शक्तिशाली। तो आपकी शक्ति के आगे उसका क्या, उसकी कोई दाल नहीं गलेगी। इसीलिए सोचने की जरूरत ही नहीं क्या होगा, पर यहाँ शक्ति भरते जाओ। अगर यहाँ रहकर वहां का सोचेंगे तो शक्ति कब भरेंगे, इसलिए यहाँ शक्ति भरने का टाइम मिला है। ये एक ऐसा मौका है ये तीन दिन, जबकि आप केवल अपने लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हो या और कोई सेवा नहीं। हम मिसाल देते हैं, या माउंट आबू में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ये क्या सीआरपी के आर्मी के या ट्रेनिंग होती, ज्ञान सरोवर जाते हैं ना तो रास्ते तो बीच में बहुत बड़ी बड़ा मैदान है, तो वहाँ रात को भी मिलिट्री वो आर्मी वाले बंदूक चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रात को भी आतंकवादी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी तो वो नहीं कि दिन में लड़ाई होती है रात को नहीं होती है, उस समय तो भाई कौरवों की बताते थे जैसे सूर्यास्त हुआ लड़ाई बंद, अभी तो कलयुग में तो ऐसे नहीं है ना। तो रात को ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठा ठा ठा, रात को आवाज भी आती है, कोई सोचेगा पता नहीं क्यों आवाज आ रही है, पर ये लोग आर्मी वाले प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। तो ये उनके लिए पीस पीरियड है, शांति का पीरियड है, लेकिन वो शांति की पीरियड में इतनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि अगर वो मैदान में जाए आतंकवादियों का उनको सामना करना पड़े या माओवादियों का सामना करना पड़े, ये बहुत है दुश्मन, तो वो उस सामना करने में सफल हो, तो प्रैक्टिस चाहिए ना उसके लिए, तो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके लिए भी मधुबन क्या है, युद्ध स्थल में जाने से पहले प्रैक्टिस है। यहाँ युद्ध स्थल नहीं है, यहाँ तो माया नहीं आएगी ना, कि आएगी कभी कभी, माया तो आ नहीं सकती, अमृत वेले आएगी थोड़ा थोड़ा। अमृत वेले भी ना आए, यहाँ तो आपको हम बताएं कि कोई सो ही नहीं सकता है, अमृत वेले 3:30-4 बजे के बाद कोई सोना चाहे ना तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि इतना चार्ज एटमॉस्फेयर है। तो उस चार्ज एटमॉस्फेयर में किसको नींद आ ही नहीं सकती है। कई कहते हैं रात को, भाई पता नहीं इतना थका हुआ हूँ, पता नहीं सवेरे उठ सकूंगा या नहीं। तो आपने क्या अनुभव किया, रात को देर से सुबह उठे कि नहीं, या सोए रहे 6 बजे तक, कोई सोया रहा क्या 6 बजे तक, नहीं कोई नहीं। तो इतना चार्ज एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में उस वातावरण में हम नींद तो कर ही नहीं सकते सचमुच। हाँ बाद में थोड़ी थकावट होती है, लेकिन उस समय तो आंख ऐसी खुल जाती है, और उस समय क्या करो, बाबा आपको बुला रहा है, बाबा का निमंत्रण है, भगवान का निमंत्रण, कौन ठुकराएगा, ठुकराएगा कोई देहधारी थोड़ी निमंत्रण दे रहा है, भगवान ने निमंत्रण दिया, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे लाल, आओ मेरे से मिलन मनाओ। तो सवेरे उठते ही जैसे आंख खुले, बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, सवेरे आंख खुलते ही पहला संकल्प क्या हो, गुड मॉर्निंग बाबा, और रात को सोने से पहले गुड नाइट। अब ये रात को सोने से पहले गुड नाइट किया तो गुड मॉर्निंग तो भूल ही नहीं सकता है, पर रात को गुड नाइट नहीं किया तो गुड मॉर्निंग भूल सकता है। और जैसे गुड मॉर्निंग किया उसके बाद कोई देहधारी की तो याद आनी नहीं चाहिए। हमारी बड़ी दीदी जी, आप लोगों को मालूम होगा, वो बहुत अच्छा स्लोगन देती थी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, सब कहती थी सवेरे सवेरे जब उठो तो सारी दिन की शक्ति अगर भरनी है ना तो उठते ही 5 केले खाओ। खा सकते हैं 5 केले, खा सकते हैं उठते ही, कौन खा सकता है। पता है इसका मतलब, जो हाथ उठा रहे माना पता है इसका अर्थ। तो 5 केले खाओ माना सबसे पहला संकल्प। बाबा को तो गुड मॉर्निंग किया ही, लेकिन कोई देहधारी याद न आए तो क्या सोचो, अकेले आए हैं, ऐसे नहीं उठे और फलाना उठाए या नहीं उठाए, हाँ, किसी को याद नहीं करना, अकेले आए हैं और अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करना है। 5 केले याद पड़े, 5 केले, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में यानी एकांत में, अकेला होकर मन से भी अकेला, अकेले को याद करना है, एक को याद करना है। इसलिए यहाँ पर देखो नाम ही रखा है मधुबन, मधु और बन। हमारे विदेशी भाई बहने मधुबन की क्या ट्रांसलेशन करते हैं पता है, फॉरेस्ट ऑफ हनी। मधुबन, मधु माना हनी और बन माना जंगल, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट ऑफ हनी। और बहुत सुंदर इसका अर्थ बताते हैं, मधु माना मधु माना हनी है, तो शहद, तो शहद कैसे बनता है, अनेक मधुमक्खियां चाहिए तब जाकर के शहद बनेगा, एक मधुमक्खी से थोड़ी बनेगा, तो कितनी मधुमक्खियां चाहिए। तो यहाँ पर मधु समान हम हैं, अर्थात संगठन है, कितनी बड़ी कितना बड़ा संगठन है यहाँ शांति वन में। देखो अमृत वेले हजारों भाई बहने होंगे, लेकिन कितना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। तो यहाँ पर तो और छोटा है, शांतिवन की भेंट में तो मधुवन पांडव भवन छोटा है, लेकिन ऐसा अनुभव करते हैं बिल्कुल जैसे कि दुनिया तो है ही नहीं। संगठन में होते हुए सब जागते हैं, सब अमृत वेला योग करते हैं, चाहे कहीं भी करते हो, हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल में करते हैं और कहीं घरों में रहते, पर अमृत वेला जरूर करते हैं। ये कितना पक्का नियम है। तो इसलिए संगठन में भी है लेकिन वन वन माना जंगल, तो जंगल माना अकेला, जंगल का राजा शेर अकेला घूमता है, हाथी झुंड में घूमते हैं, तो अकेला भी बनना है और संगठन में भी रहना है। पर संगठन में रहते हुए संगठन के प्रभाव में नहीं आना है, अमृत वेले ये अनुभव करना है, बस मैं और मेरा बाबा, बाबा से ही रूरियान करो, जो बातें करनी है बाबा से करो, जो कुछ भी सुनाना है बाबा को सुनाओ, आपको खुली छुट्टी है, बाबा का टेलीफोन खाली है, वेकेंट है, आपको जो बातें करनी है करिए, हर एक के लिए बाबा तैयार है, खाली है। ये नहीं कि आपका टेलीफोन एंगेज्ड है, नहीं, किसी के साथ भी कितनी भी कितने भी बात करे बाबा से तो भी बाबा आपके लिए सदा है, बस ये अनुभव करो, बाबा मेरा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस, और कुछ बुद्धि में न हो। और फिर बाद में भी जब आप चार धाम की यात्रा करते हो तो झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, तो वहां पर भी शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे बाबा सब की मनोकामना पूर्ण करते थे, सबकी इच्छाएं पूर्ण करते थे, सबको कितना संतुष्ट करते थे, वो अनुभव कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। बाबा के कमरे में जाते हैं तो बाबा को मात पिता रूप में देखते हैं, मात पिता का मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ है, है ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, तो मात पिता का हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ है, दुआएं हैं, तो मैं दुआओं का पात्र हूँ, ये बाबा के कमरे में बैठकर के अनुभव करो, और हर वक्त जैसे बाबा से दुआएं ले रहे हैं, बोझ बाबा को दे दो, हल्के हो जाओ और दुआएं बाबा से प्राप्त कर लो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तो मात पिता से सुख घनेरे कैसे अनुभव होते हैं वो बाबा के कमरे में कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री हॉल में आओ तो बाबा को टीचर रूप में देखो, कैसी बेहद की पढ़ाई बाबा ने हिस्ट्री हॉल में उस संदली पर बैठ करके मुरली चलाई है, जो भी हम साकार मुरलियां सुनते हैं, ये भगवान के महावाक्य उस हिस्ट्री हॉल में चले हैं, एक जगह बैठकर सारे विश्व को बाबा ने सकाश दिया है उसी संदली से। तो कई भाई बहने आते हैं ना तो कहते हैं आपने सब जगह तो चेंज कर दिया है, लेकिन हिस्ट्री हॉल में वो संदली वही है जहाँ बाबा बैठते थे, उसको चेंज क्यों नहीं किया है? तो दादी मना करती, नहीं वही, नहीं तो आजकल तो पीठ चाहिए, सीधा ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, कुर्सी में भी पीठ चाहिए, सोफा में भी पीठ चाहिए, वहां तो बिल्कुल सीधी संदली, यहाँ भी पहले संदली थी लेकिन वो हटा करके ये छोटा सा ऐसे पीठ वाला सोफा रखा है, कोई को अगर पलथी मारनी है तो भी कर सकते हैं, लेकिन वहां हिस्ट्री हॉल में नहीं चेंज किया है, वही का वही, बाबा का भी वही, मम्मा का भी वही। तो कई पूछते हैं तो दादी जी कहती थी नहीं, वो ओरिजिनलिटी हिस्ट्री हॉल की चाहिए। तो इसीलिए वहां पर बैठ करके हम कैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा टीचर बन करके पढ़ाते रहे, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान, भूत वर्तमान भविष्य का पूरा ज्ञान भगवान ने उस संदली पर बैठ करके दिया है। तो वो जो बाबा की सारी वाणी है, मुरलियां है, उसका मनन चिंतन आप हिस्ट्री हॉल में बैठ करके कर सकते हैं। ये जैसे बाबा को टीचर रूप में याद करना, कितना ऊंचा ज्ञान और उसका नशा। आज दुनिया में किसी का अगर कोई प्रोफेसर होता है, बड़ा आदमी होता है, सब नामी ग्रामी आदमी होता है, वो स्टूडेंट को कितना नशा होता है। हमारे पास यहाँ आए थे एक भाई थे, उसने PhD किया हुआ था, तो उसने अपना अनुभव में सुनाया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो प्रोफेसर थे पहले, राष्ट्रपति तो बाद में बने, और PhD वालों को पढ़ाते थे, बहुत बड़े, बहुत लर्नेड थे, इतना लर्नेड थे वो, बहुत ही बुद्धिमान थे, राष्ट्रपति बने तो वो उनके प्रोफेसर थे। और इतने नशे से कहता था मेरा प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, भारत का राष्ट्रपति, तो नशे से कहता था हमारा टीचर कौन हमारा टीचर कौन, हाँ स्वयं भगवान, जिससे दुनिया ज्ञान मांग रही है। पर कल बाबा ने नशा चढ़ाया, हमारा टीचर वो है जिसका कोई टीचर नहीं है अब वो सर्वपल्ली राधा कृष्णन का भी तो कोई टीचर तो होगा ना ऐसे ही थोड़ी इतना बड़ा वो लर्नेड बना, इतना होशियार बना, टीचर से ही तो पढ़ाई की होगी उसने भी, लेकिन हमारा टीचर जिसका कोई टीचर नहीं, कोई टीचर नहीं। सोचो ऐसा कोई होगा टीचर दुनिया में जिसका कोई टीचर ही ना हो लौकिक में भी माँ बाप होंगे, उनके भी माँ बाप होंगे, पर हमारा वो माता पिता जिसका कोई माँ बाप नहीं, कोई माँ बाप नहीं, तो शिव बाबा का तो कोई माता पिता नहीं। चलो ब्रह्मा बाबा का तो फिर भी पिता है शिव बाबा, लेकिन शिव बाबा का तो कोई माता पिता नहीं। फिर हम एक पहेली भी कहते ना, ऐसा कौन जिसकी जिसका केवल बाप है लेकिन माँ नहीं है, ऐसा कौन जिसकी माँ भी है और बाप भी है, ऐसा कौन जिसकी दो माँ और दो बाप है। समझ गए पहेली ये पहेली है ना, वो कौन जिसका एक ही बाप है, माँ नहीं है, कौन? ब्रह्मा बाबा। ऐसा कौन जिसकी एक माँ है दो बाप है, मम्मा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मम्मा की माँ भी तो हो गई ना, भले वो बेटी है ना, तो माँ भी है, तो ब्रह्मा बाबा माँ है और बाप भी है और शिव बाबा बाप, तो इसीलिए ऐसे कौन जिनकी दो माँ दो बाप बच्चे हम बच्चे दो माँ, एक जगदम्बा माँ और ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप और शिव बाप। तो देखो हम कितने भाग्यशाली है, तो उस रूप से वो भाग्य का अनुभव करो। तो टीचर रूप में बाबा को हिस्ट्री हॉल में देखो, और फिर आप शांति स्तंभ पर जाएंगे तो शांति स्तंभ पर ब्रह्मा बाबा की यादगार है, वो समाधि है, तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां गलाई, सेवा में गलाई, तो वहां शिव बाबा को सतगुरु रूप में याद करो। उस सतगुरु से हम पावन बन रहे हैं, हम विकर्मा जीत बन रहे हैं, प्रकृति जीत बन रहे हैं, तो वो सतगुरु के साथ बैठे हैं शांति स्तंभ पर। जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने, बंधन मुक्त बने, संपूर्ण बने, बस मुझे भी ब्रह्मा बाप समान बनना है, वो आप शांति स्तंभ से प्रेरणा ले सकते हैं। तो सतगुरु का अनुभव शांति स्तंभ पर, और सखा का अनुभव आप बाबा की झोपड़ी में कर सकते हैं। सखा कुछ भी दिल की बात छोटी मोटी जो भी हो, हाँ बाबा को बता दो, पत्र लिख करके बाबा के बॉक्स में डाल दो, बाबा जाने आप जानो बस, और किसी को कुछ पता नहीं होना है। बस दोस्त को कैसे लिखते, खुदा दोस्त बना लो, खुदा दोस्त से सब काम करा सकते हो आप। माँ बाप से कैसे कराएंगे, टीचर से कैसे कराएंगे, सतगुरु से भी नहीं करा सकते, पर खुदा दोस्त है तो दोस्त से तो आप जो काम कराओ वो आपकी हर सेवा में हाजिर है। बस आज्ञा करने की बात है, आप उनको आज्ञा करो। एक बहन है वो अपना अनुभव सुनाती है, तो बाबा को कैसे यूज करती है, तो समझो कहीं गई ना बाप, उसका नाम रखा है सोनू, बेटा बना दिया या जो को, बस सोनू, पहले उसका नाम रखा था पिल्लू। मैंने कहा ये तो कुत्ते को बोलते पिल्लू नहीं, मैंने कहा ऐसा कैसे नाम रखा है बाबा का, तो कहती क्या रखूं, तो मैंने कहा वो तो सोन बेटा है, तो कहा सोन बेटा है, सोना है, तो मैंने कहा अच्छा सोनू रख दो पर पिल्लू तो मत रखो तो और कहती मैं बाबा को कैसे यूज करती हूँ, कुछ भी समझे, अभी मेरा चप्पल नहीं मिला है, सोनू चप्पल कहाँ है, और सचमुच देखो तो वहां पड़ा हुआ है सोनू अभी तो था ही नहीं, अभी कैसे आ गया, लेकिन सोनू रख के गया कितनी इतनी वंडरफुल बातें बताती है। कहती मैं अमेरिका गई थी, अपने परिवार के साथ गई थी, तो उसके जो युगल थे वो पैसे होते ना डॉलर्स, वो यहाँ पर पट्टी पट्टा बांधते ना, तो उसके अंदर रखे थे, और कैसे कहते पता नहीं वो चाकू से निकल गए थे, और जब देखा तो है ही नहीं, कैसे निकला कैसे फट गया, तो इसने कहा सोनू ला देगा वापस। अरे सोनू ला देगा, उसका पति कहेगा तुम बुद्धू हो क्या तुम, उस कहाँ से सोनू, यहाँ से कौन चोरी करके कहाँ से आएगा, नहीं मेरा सोनू लाके देगा, बस सोनू आपको लाके देना है। और देखो तो कोई आ गया पीछे से, ये आपके पैसे गिर गए थे या क्या, देखो दे दिया, मिल गया। उसके बाद इसके पति का विश्वास बैठा है, तो इस पर हंसता था, लेकिन उसके बाद वो भी उसको भी कुछ ना फिक्र, तुम सोनू से तो पूछो तो उसे हंसी की बात है, पर खुदा दोस्त बनाओ, बच्चा बनाओ, हाँ साजन बनाओ, क्योंकि अकेले में बैठते ना बाबा के साथ, कोई इंडिविजुअल बैठते थे तो बाबा झोपड़ी में उनसे बैठते थे, कुछ उनका कुछ लौकी, कई बार कारोबार होती थी कई तो बाबा झोपड़ी में बुलाते थे, तो इसलिए बाबा को ऐसे खुदा दोस्त बना करके जो भी आपकी छोटी मोटी बातें हैं कुछ भी है वो बोझ बाबा के आगे हल्का कर दो, बस बाबा जाने आप जाने, और फिर देखो बाबा किसी न किसी रूप से उसका उत्तर जरूर देगा, वो बात कैसे बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अनुभव है, बहुतों का अनुभव है, करके देखना। अभी आपको रोज बताया जाएगा बाबा को पिता रूप में, टीचर रूप में, या सतगुरु रूप में, साजन रूप में, धर्मराज रूप में, लिखो तो आप लेटर टू गॉड, आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है, तो लेटर टू गॉड, बाबा को पत्र लिखो, गॉड नहीं, गॉड शब्द कहेंगे तो बहुत दूर का रिश्ता है, हाँ मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा सदगुरु है, मेरा सखा है, दोस्त है, परंतु भले लास्ट धर्मराज भी है, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो धर्मराज ही चित्तू करेगा, इसीलिए भले धर्मराज के रूप में भी जो जो बात है हल्का होने लिए बाबा को लिख दो, ये नहीं सोचो कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ता नहीं है, इसीलिए बाप जाने और आप जाने, बस बाबा के हो गए, बाबा से प्रतिज्ञाएं करो, सजनी बन के उस साजन से प्रतिज्ञा करो, आपके हाथ में जो कुछ चाहिए, पर बाबा के साथ सर्व संबंध है मेरे, ये अनुभव यहाँ से ऐसा पक्का करके जाओ जो आप बिल्कुल अनुभव करो, यहाँ से गए एकदम बदल के गए, भट्ठी में पक के गए, बदल के गए, और वहां जब आप जाएं वापस तो सब महसूस करे कि अरे ये तो एकदम बदल के आए, वो पुराना संस्कार एक भी न रहे, एक भी न रहे, बस तो पहले लिस्ट निकालो क्या क्या मेरे अंदर अभी तक पुराने संस्कार है, तो एक होती है कमियां, वो कमियां भरनी होती है, ये मार्जिन है, मैं यहाँ हूँ और यहाँ बनना है। और दूसरे किसी से भेंट नहीं करो, अगर भेंट करनी भी है तो अपनी कमी से भेंट करो, पहले क्या कमी थी और अभी मैंने कैसे उसको खत्म किया, कैसे उसको भरा। मेरी अंदर इनसे जास्ती वो ताकत है या शक्ति है या कोच कहो पुरुषार्थ मेरा ज्यादा, ये किसी और से भेंट नहीं करो। कल मेरा कितना था और आज मेरा कितना, अपने से आप भेंट करो बस। पर अपने से भेंट करने का भी मतलब ये नहीं है जो अज्ञान काल में हम करते थे उसको याद करो, उसको तो भूल ही जाओ क्योंकि वो तो पूर्व जन्म था। लेकिन बाबा का बनने के बाद मेरी कितनी उन्नति हुई है, कल से आज ज्यादा होनी चाहिए, आज से फिर आने वाले कल ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए जो कल बीता उनसे आज भले भेंट करो कि आज मैं उनसे आगे हूँ, पर दूसरे से आगे हूँ ये भेंट नहीं करो। तो न अपना पूर्व जन्म जो लौकिक था वो याद करो, न किसी और को देखो, बस आगे देखो। आगे क्या देखो, मुझे क्या बनना है, पहले कर्मातीत बनना है, फिर संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है, फिर देवता बन के आना है ना। पूरा प्रोग्राम फिक्स है ना, इससे नीचे ऊपर तो कुछ नहीं होगा। ये हमारा प्रोग्राम है, तो यहां से पूरा बदल के जाना है। और ये उद्देश्य, एक होता है लक्ष्य, दूसरा उद्देश्य। लक्ष्य माना तात्कालीन, मुझे यहाँ 3 दिन में क्या करना है, पर उद्देश्य बहुत बड़ा है। बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है, स्वर्ग बनाना है, तत्वों को पावन करना है, इतना बहुत बड़ा काम है। पर उसके लिए यहाँ शक्ति भरनी है। ये पीस पीरियड है, इसीलिए मौन, कुछ और सोचना नहीं है। ये मौन में रहने में फायदा ये है कि समय वेस्ट नहीं जाएगा, मुझे सोचना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है तो सोचना भी नहीं है, बोलना होगा तो सोचना पड़ता है क्या बोलूं, है ना। कई बार दोस्त आपस में घूमने जाते हैं, अभी मैं क्या इनसे बात करूं, तो सोचना पड़ता है क्या बात करूं, तो पहले सोचूं तब तो बात करूं, पर सोचना ही नहीं है क्योंकि बोलना नहीं है, तो समय बच गया। और वो समय बच गया वो बाबा के लिए है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है, बस आप मोए मर गई दुनिया, 5 केले सवेरे उठ के खाओ। तो इतनी शक्ति भर जाएगी, इतनी भक्ति शक्ति भर जाएगी जो एकदम संस्कार परिवर्तित कर देगी। ठीक है, चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी
ओम शांति दीदी के लिए कहना चाहेंगे, जैसे कहा जाता है सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, ऐसे ही दीदी आपकी मधुर वाणी की प्रेरणा द्वारा बट्टी की शुरुआत नहीं होती, बट्टी की शुरुआत नहीं होती। दीदी ने बहुत सुंदर लक्ष्य बताया हमें, परिवर्तन होने का बहुत अच्छा उद्देश्य बताया। 4 धामों में रहकर हम बाबा के साथ कैसे संबंध जोड़ सकते हैं, उन 3 दिनों का हमें प्रोग्राम दिया।